Krishna.
आप सबका सौभाग्य है कि आप आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हो. आज सुबह हम जो में भागवतम के प्रथम स्कंद के एक श्लोक पर प्रवचन दे रहे थे और उस श्लोक में नारद मुनि जी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति के द्वारा और किसी कार्य से कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता. तो उन्होंने व्यासदेव जी को कहा कि शुद्ध भक्ति का ज्ञान दीजिएगा जो कि उन्होंने श्रीमद् भागवत द्वारा हमें दिया है. तो आज हम आपको एक वैष्णव भजन है, एक बड़े प्रसिद्ध आचार्य ठाकुर भक्तिनो जी का. तो वो भजन असल में हमारी इच्छा थी वो भजन आपके साथ गाने के लिए, पर क्योंकि आप सब के पास उस भजन के शब्द नहीं हैं तो हमने सिर्फ हरे कृष्णा किया. और मैंने सोचा कि उस भजन की चर्चा करें और उसके अर्थ आपको समझाएं. ठाकुर भक्तिनोद एक महान आचार्य हैं हमारी संप्रदाय में, जो कि बहुत गृहस्थ आश्रम में थे और भौतिक दृष्टि से अंग्रेज सरकार ने उन्हें मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी दी थी. उन दिनों में मैजिस्ट्रेट से ज्यादा जिम्मेदारी किसी भारतीय को सौंपी नहीं जाती थी, पर साथ में वो बड़े प्रसिद्ध भक्त भी थे जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और अपनी बड़ी सुंदर कविताओं में वही संदेश प्रस्तुत किया है जो कि हम वैदिक शास्त्र में प्राप्त करते हैं. तो उनका एक भजन है जैसे हम जीव जागो के नाम से जानते हैं, शायद आप भक्तियां गाते होंगे कभी कभी. तो वो कहते हैं इस भजन में, जीव जागो गोरा चंद बोले, खोत निद जाओ माया भीषा चीरा खोले. कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी, आप सब चैतन्य महाप्रभु जी से परिचित हो, वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी हर व्यक्ति से ये कह रहे हैं कि हे जीवात्मा तुम जागो, तुम बहुत समय से माया की गोद में सो रहे हो, तुम जागो. तो आप कहोगे स्वामी जी हम तो जागे हुए हैं, क्या आप हमें सोए दिख रहे हो? हम भौतिक दृष्टि से तो जाग रहे हैं पर आध्यात्मिक दृष्टि से सो रहे हैं. दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक दृष्टि से हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमारा असली क्या स्वरूप है, क्या है हमारा कर्तव्य, किस प्रकार असली सुख की प्राप्ति हो सकती है. तो चैतन्य महाप्रभु जी उन्हें सबसे दया दयालु अवतार माना जाता है और चैतन्य महाप्रभु जी अवतारित हुए किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए. इस कलियुग की प्रजा पर देखो तो ये देखने में आता है कि लगभग 100% प्रजा पतित है. कलो शूद्र संभवा, शास्त्र में कहा गया है कि इस कलियुग की जो प्रजा है लगभग शूद्र बुद्धि की है. तो ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं जीव जागो, हे जीव आत्मा जागो, ये जो मनुष्य जीवन आज हमें प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात. ये नहीं कि ये हर जीवन मनुष्य योनि में प्राप्त होगा, नहीं. अक्सर अज्ञानता के कारण हम ये सोचते हैं कि हर शरीर मनुष्य योनि में प्राप्त होगा, पर ये गलत है. जल की योनियां हैं, स्थावर योनि हैं, कीड़े की योनियां हैं, पक्षी की हैं, पशु की हैं, और इन सब योनियों में गुजरने के पश्चात मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और मनुष्य जीवन के द्वारा ही हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि असली सुख शांति का क्या साधन है। पशु के जीवन में आप इन प्रश्नों का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकते, सच बात है। जैसे कि आपको कोई बीमारी होती है, समस्या होती है, आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हो, पशु के पास तो ये बुद्धि नहीं रहती। अगर कोई भाग्यवान पशु है जिसके पास कोई अच्छा मालिक है तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाए। तो जी चैतन्य महाप्रभु जी अवतारित हुए थे कलयुग की प्रजा का उद्धार करने के लिए, तो कह रहे हैं जागो और आध्यात्मिक संदेश को समझने का प्रयास करो। आज अगर आप किसी भौतिक कार्यक्रम में लोगों को बुलाते हो तो बड़े उत्साह के साथ वो आ जाते हैं, और आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए बुलाते हो तो आते हैं नहीं आते, आप कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ देंगे। जैसे आप लोग कभी कभी घर में सत्संग कराते होगे तो आपका अनुभव होगा कि सत्संग के कार्यक्रमों में आप 10 लोगों को बुलाओगे तो 2-3 आएंगे, पर अगर कोई भौतिक विषय हो तो सब तरसते ही आने के लिए। तो ये है आज समाज का दुर्भाग्य। तो ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी आप सबसे ये निवेदन कर रहे हैं कि तुम जागो और माया से बचो। माया से क्यों बचें? क्योंकि जब तक हम माया के प्रभाव में रहेंगे हमें इस भौतिक संसार में भटकना पड़ेगा अनेक योनियों में, और जब हम भगवान के शरणागत होने का प्रयास करते हैं तो फिर हम तैयारी कर रहे हैं एक आध्यात्मिक ध्येय के लिए। भौतिक ध्येय तो केवल कष्ट ही पहुंचाएगा। 7 प्रकार के कष्ट हैं, जन्म मरण बुढ़ापा और बीमारी। इसके अलावा 3 और प्रकार के कष्ट हैं, मन का कष्ट प्रकृति द्वारा और दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। इसलिए शास्त्रों का निर्णय है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। आगे कहते हैं भाजिया बोलिया ऐसे संसारा भितारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यारा भारे। जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो वो अत्यंत कष्ट भुगतता है। आप लोग आश्चर्य हो गए ये सुनकर, अगर इस विषय में आपको और अधिक ज्ञान चाहिए तो आप श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में बड़े गहराई के साथ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो इस विषय के ऊपर। कई बार हमने बड़े बड़े वैज्ञानियों के साथ इस विषय की चर्चा की है शास्त्रों के आधार पर, और सब आश्चर्य हो जाते हैं ये सुनकर कि श्रीमद् भागवत में इतना गहरा ज्ञान है इस विषय के ऊपर। तो जब बच्चा माता के गर्भ में होता है 6 महीने तो वो सोता है गहराई के साथ। जैसे कभी आप बहुत थके हुए हो तो आप बहुत गहरी नींद में होते हो, हाँ, फिर गहरी नींद से जाग भी जाते हो। कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्ति कोमा में आ जाता है, कोमा में रहता है 1 महीना 2 महीना 6 महीना, फिर कोमा से निकल आता है। तो उसी प्रकार शास्त्र के अनुसार पहले 6 महीने माता के घर में बच्चा बिल्कुल गहरी नींद में होता है, उसे कुछ होश नहीं होती, कोमा के समान। पर फिर 7वें महीने से होश आती है।
और जब इसे होश आती है माता के घर में तो क्या देखता है, वो ये देखता है कि मेरे शरीर में चारों तरफ केवल गंदी है, चट्टी पेशाब उल्टी लहू। तो उस स्थिति में वो ये इच्छा प्रकट करता है कि अगर मैं यहां से निकलूं तो मैं आपके शरणागत हो जाऊंगा। जैसे कि भगवान गीता के सातवें अध्याय में कहते हैं, चार प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं और चार प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आते। जो चार प्रकार के व्यक्ति मेरी शरण में आते हैं वो कौन हैं? एक, जो दुखी हो, जो कठिनाई में है, कठिनाई में दुख के कारण हम सोचते हैं हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। दूसरा है जिसे धन चाहिए, हमें धन चाहिए पर हम ये स्वीकार करते हैं भगवान के आशीर्वाद से ही धन भी आएगा, तो हम दान देते हैं, तीर्थ के स्थानों में जाते हैं इत्यादि, इस भावना से कि हमें धन प्राप्त हो। तीसरे प्रकार का व्यक्ति जो भगवान के शरण में आता है वो है जिज्ञासु व्यक्ति। जिज्ञासा के कारण हम सोचते हैं चलो जाकर हमें देखने दो क्या है ये भगवान का उपदेश। और चौथा है जो कि ज्ञान के आधार पर ये स्वीकार करता है क्या कि मुझे भगवान की शरण में आना चाहिए। तो इन चार कारणों वश हम आध्यात्मिकता में रुचि लेते हैं। और भगवान कहते हैं सातवें अध्याय में गीता के कि चार प्रकार के व्यक्तियों में सबसे प्रिय कौन है, जो कि ज्ञान के आधार पर मेरी शरण में आता है, जो ज्ञान के ये ज्ञान प्राप्त करता है क्या कि भगवान की सेवा ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। तो ये तो हुए चार प्रकार के व्यक्ति जो भगवान के शरण में आते हैं। और आप सब जो यह उपस्थित हो, इन चार कारणों के कारण आप सब जो उपस्थित हो, भगवान के चरण शरण स्वीकार करना चाहते हो, चाहे कोई आए किसी कारण से चिंता नहीं, कम से कम आप भगवान की शरण तो आने का शरण तो स्वीकार करने का प्रयास कर रहे हो। चार प्रकार के व्यक्ति भगवान के शरणागत नहीं होते, जैसे कि आप सबका अनुभव होगा, आपके रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, आप उनसे बार बार निवेदन करते हो आओ आओ मंदिर आओ गीता पढ़ो, वो क्या कहते समय नहीं है, और आपकी भक्ति को देखकर वो हंसते कहते देखो इतना जवान व्यक्ति है और अभी से ही भजन करना शुरू कर दिया। आपकी भक्ति देखकर लोग हंसते, सच बोला हाँ हंसते ना, हाँ हंसते हैं, सच बात है। हमारे एक भक्त हैं दिल्ली में, उनके पहले जो लड़का है कोई 20 साल का होगा, 20-21 साल का, तो अभी उसने दीक्षा भी ली है, अपना धंधा भी करता है और भक्ति भी करता है, पर उसके रिश्तेदार मित्र कहते हैं अरे भाई तुम तो पहले ज्यादा अच्छे थे, पहले तुम शराब पीते थे, बीड़ी सिगरेट पीते थे, लड़कियों के साथ घूमते थे, वो ज्यादा अच्छा। अब जो वो घर में कहता है कि मैं इतवार को मंदिर जाना चाहता हूँ, तो घर वाले कहते हैं मंदिर क्यों जा रहे हो, तब उसे झूठ कहना पड़ता है, कहता है मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। और क्रिकेट की बहाने वो सारा दिन आता है मंदिर। तो जब वो भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं तो अनेक व्यक्ति सोचते हैं ये क्या विदेशी कार्य व्यक्ति कर रहा है, क्योंकि आजकल साधारण कार्य तो माना जाता है दुनियादारी का। तो भगवान कहते हैं चार प्रकार के व्यक्ति मेरे शरण में कभी नहीं आते। कौन है चार प्रकार के व्यक्ति? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया पर्थ ज्ञान अश्रम भगवान अश्रता। चार प्रकार के व्यक्ति में इस शरण में नहीं आते। एक है, ये भगवत गीता का निर्णय है, हम आपको केवल गीता का संदेश दे रहे हैं। एक है भगवान कहते हैं मूढ़ा, जो कि बहुत प्रयास करता है, परिश्रम करता है, पर जब जिससे कहो कि आप अध्यात्मिक में रुचि लो तो वो कहते हैं समय ही नहीं है। दूसरा है नराधमा, जिसका समाज में बेशक ऊंचा स्थान हो, राष्ट्रपति, अध्यापक, प्रधानमंत्री, पर अगर उनसे पूछा जाए कि जीवन का क्या लक्ष्य है तो वो ठीक उत्तर नहीं दे पाएंगे, कहेंगे खाओ पियो जियो। और तीसरे प्रकार का है जिसके पास भौतिक ज्ञान है और भौतिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है भगवान के शब्दों को बदलने के लिए। जैसे कि शायद आप लोगों को, शायद आपको पता नहीं हो, ये प्राचीन बात है, जब अंग्रेजों का राज्य था भारत में तो एक बड़ा प्रसिद्ध इंग्लैंड से एक फिलोसफर आया था, उसका नाम मैं भूल गया नहीं, तो वो फिलोसफर इंग्लैंड से आया था, उसने भारत में आकर हमारे शास्त्रों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, भगवतों को पढ़ा, और उसने ये बच्चे को भाग रखा, तो उसने ये सब पढ़कर ये कहा कि जो वैदिक शास्त्रों का निर्णय है बिल्कुल ठीक है। तो उसने अनेक लेख लिखे ये स्थापित करने के लिए कि जो शास्त्रों का, वैदिक शास्त्रों का निर्णय है ये स्पष्ट है और ये पूरे मानव समाज के लिए है। जब ये इसके आर्टिकल इंग्लैंड में पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा ये पागल है, हमने उसको भेजा था भारत इस विचार से को कहेगा कि ये सब झूठा है और ये लिख रहा है कि ये सब सच्चा है। और इसने कई लेख प्रकाशित किए भारत के अनेक ग्रंथों में, और भारत की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं उनमें ये लेख अभी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर ब्रिटिश के लोगों ने वहां से नए स्कॉलर भेजे, मैक्स मुलर और कईयों को, जिनको पहले तो उन्होंने भारत में जाकर कहा तुम संस्कृत सीखो, पहले तो वो सब बने संस्कृत के पंडित, फिर संस्कृत के विद्वान बने, पीएचडी डिग्री वगैरह मिली, फिर उन्होंने जब अनुवाद किया वेदों, वैदिक शास्त्रों के संदेश को बिल्कुल बदल दिया, घुमा दिया लोगों के दिमाग को। तो आज लोग इनके अनुवाद को पढ़कर कहते हैं अरे भाई ये तो पीएचडी, गलत नहीं हो सकता, पर गलत है। तो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास भौतिक ज्ञान रहता है पर भौतिक तालीम का वो दुरुपयोग करते हैं लोगों को भगवान के संदेश से बदलने के लिए। और फिर चौथे प्रकार के व्यक्ति जो भगवान की शरण नहीं स्वीकार करता वो है अश्रम भगवान अश्रता, जो कि स्पष्ट रूप से असुर है, नास्तिक, बिल्कुल मानता ही नहीं कि भगवान नाम की कोई, भगवान नाम का कोई व्यक्ति है या भगवान नाम की कोई शक्ति है। तो ठाकुर भक्तराव जी कह रहे हैं कि जब तुम तो माता के घर में थे कठिन स्थिति में, तुमने ये वादा किया था, क्या क्या वादा, जब हम इस माता के गर्भ से निकलेंगे तो हम भगवान की शरण स्वीकार करेंगे, हम भजन करेंगे, पर आज जब तुम बाहर निकले हो तुम अपना वादा भूल गए। कई बार ऐसे होता है ना, हमें कुछ गहरी बीमारी होती है तो हम निर्णय कर लेते हैं हमने हाँ ये परहेज रखना, ये रखना, ये रखना, जब बीमारी चले जाती है तो सब भूल जाते हैं, सच बात है। तो यही कह रहे हैं ठाकुर भक्तराव जी कि तुमने वचन तो दिया था कि माता के घर से निकलकर तुम आध्यात्मिकता का पालन करोगे, पर अब जब माता के घर से निकले हो तो ये वचन को भूल गए हो और तुम अज्ञानता में रह रहे हो। अज्ञानता में रहने का अर्थ है अंधेरेपन में रहना, हमारे पास ये छूट है, हम अंधेरेपन में रह सकते हैं या ज्ञान की रोशनी में। जैसे कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय में सातवें श्लोक में अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि वो बेचैन हो गए हैं, निराश, और वो कहते हैं भगवान से कि मैं अभी आपके शरण स्वीकार करता हूं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। फिर भगवान ने गीता का संदेश देना आरंभ किया। 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से पूछा, अब तुम्हारी अज्ञानता क्या दूर हो गई है? अर्जुन ने क्या कहा? हाँ। और फिर भगवान ने क्या कहा? अब तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे करो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपहानम चा, कि मैं हरे के हृदय में विराजमान हूं और मैं स्मरण का कारण बनता हूं और भूल का कारण भी बनता हूं। भगवान आपको ये शक्ति देते हैं उनका स्मरण करने का, और भूलने की योग्यता भी भगवान से ही आती है। ये योग्यता आती है हमारी इच्छा के अनुसार। अगर तो हम ये निर्णय कर लें कि हमने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो भगवान आपको शुद्ध भक्तों की संगत में पहुंचा देते हैं। जैसे कि मैं कल और परसों सूरत में था, तो सूरत में एक बड़े अच्छे गृहस्थ भक्त हैं आप जैसे इंजीनियर, तो हम उनसे बात कर रहे थे। मैंने पूछा आप भक्त कैसे बने, तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने भगवद गीता गुजराती में पढ़ने को दी थी, तो मैंने गुजराती में भगवद गीता पढ़ी। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ कोई इस्कॉन का मंदिर है सूरत में, फिर मैंने मंदिर आना शुरू किया, फिर भक्तों के संबंध में जुड़े, और फिर उन्होंने भक्ति की विधियों का पालन आरंभ किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे में श्रद्धा हो तो भगवान उस प्रकार की हमें बुद्धि देते हैं और सुविधा बनाते हैं। तो ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं कि तुम भूल गए हो, तुमने क्या वचन दिया था जब तुम घर में थे, और अब तुम अज्ञानता के प्रभाव में आ गए हो। आगे, तुम्हारे लाए थे हमें आईन हुआ बतारा, आमी बिना बंधु आ रहे के अचे तुम्हारा। ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं कि मैं अवतारित हुआ हूं क्यों? तुम्हारे उद्धार के लिए, और मेरे अलावा तुम्हारा कोई और मित्र नहीं। आमी बिना बंधु ना है के अचे तुम्हारा। हाँ, आप तो बंगला भाषा जानते हो। आमी बिना मतलब कि मेरे अलावा, बंधु का मतलब है मित्र, भाई, बंधु का मित्र। तो ठाकुर भक्त जी कह रहे हैं कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई और मित्र नहीं है। भगवान है हमारे शुभचिंतक। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? हम बीजा प्रदा पिता, मैं हूं सब योनियों का पिता। तो ये जो वैदिक शास्त्रों का उपदेश है, ये पूरे मानव समाज के लिए है। अगर हम ये सोचें कि ये उपदेश केवल भारतीयों के लिए है या हिंदुओं के लिए है, तो गलत है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये जो उपदेश है, ये पूरे मानव समाज के लिए है। श्रील प्रभुपाद जी ने इन ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, जिनका आगे अनुवाद लगभग विश्व की हर प्रसिद्ध भाषा में हो चुका है। और यह अनुभव किया जा रहा है कि सारे विश्व में लोग इस संदेश को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये पूरे समाज के लिए है। और हम सब अक्सर ये मानते हैं कि जो व्यक्ति हमें भौतिक सुविधा दे तो वो हमारा मित्र है। हाँ, समझो कोई आपको धंधे में सहयोग दे तो हम कहेंगे ये हमारा असली मित्र है। समझो कोई हमें इंद्रिय तृप्ति के कार्य में सुख दे तो हम इसको बंधु मानते हैं ना, कहते हैं ये तो हमारा अच्छा मित्र है। पर कौन है आपका असली मित्र? आपका असली मित्र वो है जो कि आपको भगवान के चरणों में पहुंचाना चाहता है, जो कि आपको वो ज्ञान देना चाहता है जिसके द्वारा आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकोगे। वो है असली मित्र, वो नहीं जो आपको यही कहता है कि भगवान को कैसे भूला जाए। वो मित्र है जो कि आपको भगवान का संदेश पहुंचाना चाहता है। इसके लिए इसीलिए आपने देखा होगा कि इसको उनके भक्त सारे विश्व में हर अवसर का लाभ उठाते हैं भगवान का संदेश आगे पहुंचाने के लिए, हर अवसर का लाभ उठाते हैं भगवान का संदेश आपके हृदय में पहुंचाने के लिए। जैसे कल हम गए थे, कल शाम को यहाँ बॉम्बे में एक कार्यक्रम का प्रबंध किया था पीएनटी कॉलोनी में, पहली बार उस इलाके में कार्यक्रम कल शुरू किया था बॉम्बे में एयरपोर्ट के पास। तो जब भी उनको मौका मिले, आप लोग यहाँ गृहस्थ भक्त हो, घर रहते हो, आप लोग भी हर मौका का लाभ उठाइए भगवान का संदेश आगे पहुंचाने के लिए। एनेची सोनी माया नसी बड़ा लागी, हरि नाम मां मंत्र लाओ तुम्हें मांगे। तो अब ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं कि मैं वो दवाई लाया हूं आपकी बीमारी को दूर करने के लिए। क्या है हमारी सबसे बड़ी बीमारी? सबसे बड़ी बीमारी यह है कि हमारा हृदय जो है कोले के समान काला है। गुरु जी कहते थे कि कोले से भी ज्यादा काला, तो हम अंदाजा लगा हमारा हृदय जो है कोले से भी ज्यादा काला है। चाहे आपकी चमड़ी सफेद हो, हृदय तो हम सबका कोले से भी ज्यादा काला है। क्यों है? क्योंकि इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का गहरा प्रभाव है, और इस प्रभाव के कारण हमें असली ज्ञान समझ नहीं आ रहा। इस ज्ञान के कारण जो नकली चीज है उसे हम असली मानते हैं, और जो असली है उसे नकली मानते हैं। असली कार्य, असली ज्ञान क्या है? गीता के दूसरे अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो। भगवान ये स्थापित कर रहे हैं कि शरीर केवल दो दिन के लिए आपका, केवल थोड़े समय के लिए आपके आत्मा को ढकता है, और फिर जिस प्रकार आप एक शरीर पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र स्वीकार करते हो, ये शरीर एक देह, ये आत्मा एक देह को त्याग कर नया देह स्वीकार करती है। ये है भगवद गीता के दूसरे अध्याय का निर्णय। तो ये है वास्तविकता, पर अज्ञानता के कारण हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि शरीर ही हमारा स्वरूप है। तो हम सुबह से रात तक चिंतित रहते हैं शरीर को सजाने में, शरीर को सुख पहुंचाने में। हम ये नहीं कह रहे कि आप शरीर की देखभाल मत करो, पर आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका असली स्वरूप क्या है। तो ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं इस प्रार्थना में कि मैं अभी दवाई लाया हूं तुम्हारे माया रूपी विचारों को दूर करने के लिए। और क्या है वो दवाई? वो दवाई है ये हरि नाम महामंत्र। जब श्रील प्रभुपाद जी ने पहले केंद्र की स्थापना की न्यूयॉर्क में 1965 में, प्रभुपाद जी ने जब हमारा आश्रम खुला था, वहां भक्तों को कोई नियम नहीं दिया। अगर आज वो स्थिति होती तो 50 गुना ज्यादा भक्त यहां उपस्थित होते। उन्होंने कोई नियम नहीं दिया। जब हम नियम देते हैं तो लोग भाग जाते हैं। तो उन्होंने कोई नियम नहीं दिया, उन्होंने कहा केवल हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो बस। जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने उस वातावरण को अनुभव किया, तो उन्होंने कहा कौन सुनेगा ये संदेश इस देश में, जहां बचपन से ही इंद्र तृप्ति के कार्य में व्यक्ति जुड़ जाता है, बचपन से ही शराब पीना, बीड़ी पीना, ड्रग पीना, ये सब बचपन से ये गलत काम करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कौन ये संदेश स्वीकार करेगा अमेरिका जैसे देश में, और ये बात सच है। प्रभुपाद से पहले अनेक व्यक्ति गए थे अमेरिका प्रचार करने के लिए, प्रभुपाद पहले व्यक्ति नहीं थे, पर उन्होंने प्रचार करते समय कुछ गहरा ज्ञान नहीं दिया। उल्टा जब प्रभुपाद जी प्रचार करने गए थे तो एक समय, उस समय कई भारतीय स्वामी उन दिनों में जाते थे धंधा कमाने, नाम कमाने, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक सभा में बुलाया और उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी आप तो अमेरिका भी आए हो, हमें तो यहां बहुत समय हो गया है, आप ये जो उपदेश दे रहे हो कोई अमेरिकन नहीं लेगा, आप लोगों को कहते हो धोती कुर्ता पहनो, तिलक लगाओ, चार नियम का पालन करो, कोई कोई नहीं सुनेगा, आप भी हमारे जैसे पतलून कमीज पहनना शुरू कर दो, कांटे से और चाकू से खाना शुरू कर दो, अमेरिकन बन जाओ, फिर लोग शायद सुनेंगे आप। पर स्वामी जी ने कुछ बदला नहीं। तो स्वामी जी जब पहुंचे अमेरिका तो उन्होंने वातावरण को देखकर सोचा कि बहुत कम लोग, कोई नहीं लेगा ये संदेश को, पर उन्होंने कहा कि अगर राधा रानी जी की असीम कृपा हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। और इसी श्रद्धा के साथ प्रभुपाद जी ने भगवान का दिव्य संदेश का वितरण किया। तो माया को दूर करने का क्या है उपाय, ये हरि नाम। तो पहले आश्रम में प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा केवल चैंट हरे कृष्णा। तो एक हफ्ता बीत गया, तो एक हफ्ते के बाद प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए और कहने लगे स्वामी जी यू डू नॉट वॉन्ट अस टू फॉलो एनी रूल्स, आप कोई नियम हमें नहीं देना चाहते। फिर स्वामी जी ने कहा मैं इस दिन की राह देख रहा था कि जब तुम आओगे मेरे पास ये पूछने के लिए कि नियम नहीं है। फिर प्रभुपाद जी ने आस्ते आस्ते नियम दिए। तो ये हरि नाम जो है ये दवाई है हमारी भौतिक पीड़ा को दूर करने के लिए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इनके प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हो तो हरि नाम का लाभ उठाना चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, चेत दर्पण मार्जना भवमाग द्वाग्नि निर्वापना। जिस प्रकार आईने में जब धूल हो तो धूल को आप दूर कर सकते हो कैसे, साफ कपड़े से पोंछकर। उसी प्रकार आप हृदय की मैल को दूर कर सकते हो कैसे, ये हरि नाम के द्वारा। आप सबका अनुभव होगा जो कि यहां उपस्थित हो, खास करके जो जाप करते हैं, कि जब पहले आपने हरि नाम शुरू किया आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप 16 माला कर पाओगे, आपने सोचा होगा ये तो बहुत कठिन है, और जैसे ही आपने जप करना आरंभ किया आस्ते आस्ते भगवान ने आपको सुविधा दी, बुद्धि दी और पवित्रता के कारण आप आगे बढ़ सको। तो ठाकुर भक्ति ने कह रही ये हरि नाम जो है यही एक उपाय है। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पुरैया से ही हरि नाम अंदर लाई लो मगिया। तो ठाकुर भक्ति विनोद चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों में गिरते हुए ये प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कृपा करके हमें हरि नाम दीजिए, कृपा करके हमें हरि नाम दीजिए, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो हरि नाम के उच्चारण के द्वारा हम क्या भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? क्या प्रार्थना? हमें भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। एक और प्रार्थना में, जिसे हम श्री नाम के नाम से जानते हैं, ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं, जाय गौर मधुर स्वरे के चैतन्य महाप्रभु बड़े मधुर स्वर से गा रहे हैं। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जी तो स्वयं भगवान थे। भगवान के लिए कोई कार्य असंभव है? हमारे लिए कोई कार्य संभव नहीं है। भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जी एक समय एक जंगल से गुजरकर जा रहे थे। जंगल का नाम था जाड़खंड जंगल, आज भी प्राप्त है मध्य प्रदेश में। तो वहां उन्होंने पशुओं से भी हरि नाम का कीर्तन करवाया। पशुओं से भी उन्होंने हरि नाम का कीर्तन करवाया। तो चैतन्य महाप्रभु जी जो भगवान थे, एक समय चैतन्य महाप्रभु जी 4000 मील की यात्रा लेकर दक्षिण भारत में गए। दक्षिण भारत में सबको वैष्णव बना दिया। जिस नगर गांव में वो जाते थे, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, और उनका दर्शन प्राप्त करते ही लोग हरि नाम को स्वीकार करके हरि नाम का जाप करते थे। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी ने दक्षिण भारत में सबको वैष्णव बनाया। वाराणसी में एक समय 10,000 मायावादी सन्यासियों की चर्चा हो रही थी, सबको आकर्षित किया अपने प्रति, वो हरि नाम दिलवाया, सबको हरि नाम दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी हरि नाम का कीर्तन कर रहे हैं, रिये थाको वाने थाको सदा हरि बोले थाको, चाहे आप गृहस्थ हो या सन्यासी, हरि नाम को जरूर स्वीकार करो। कई बार सुनने में आता है गृहस्थों के द्वारा कि हम तो गृहस्थ आश्रम में हमें पूरी छूट है, हम तो जब सन्यास लेंगे जब हरि नाम शुरू करेंगे, अब तो हम गृहस्थ आश्रम में पूरी छूट है, जो भगवान ने छूट दिए। नहीं, भगवान कहते हैं गृहा था को वाना था को, चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, हरि नाम को जरूर स्वीकार करो। सुखे दुखे भूले नाखो वदने हरि नाम करोड़े, सुख में और दुख में दोनों स्थितियों में हरि नाम का जाप करो। अक्सर हम सब का अभ्यास है कि सुख की स्थिति में हम भगवान को भूल जाते हैं। सच बात है, खास करके जब लोगों के पास धन हो, जैसे कि श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में हम एक कथा पढ़ते हैं। आप कुबेर से परिचित हो? कुबेर से? हाँ, कौन है कुबेर? हाँ, देवताओं के खजांची। तो उनके दो बेटे थे, धनी पिता के बेटे थे। तो वो दो बेटे जो थे बुरी संगत में थे, और एक समय जब नारद मुनि जी वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने नारद मुनि जी को ना तो आदर दिया, वो इतने नशे में थे, ना ही अपने नंगे शरीर को ढका। क्योंकि जब व्यक्ति के पास धन आता है तो बहुत घमंडित हो जाता है, ये शास्त्रों का निर्णय है। जैसे कि जब आध्यात्मिक कथा होती है या चर्चा, आप देखोगे कि बहुत कम बहुत धनी व्यक्ति वहां उपस्थित हैं। ये नहीं कि आप लोग बहुत ही दृष्टि से गरीब हो, गलत नहीं समझना, पर जो बहुत धनी व्यक्ति हैं, मर्सिडीज वाले, बड़ी मोटरों वाले, वो तो बहुत कम आते हैं, मंदिर आते हैं, नहीं समय नहीं है। सोचते हैं कि हमारे धन से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, हमें साधुओं के पास भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता। तो वो भौतिक धन संपत्ति के बजाय बोझा बन जाता है, क्योंकि वो धन आपको भगवान से दूर ले जा रहा है। उससे तो अच्छा है ऐसी स्थिति में रहना जहां भगवान का स्मरण कर सको। तो ये कुबेर के जो दो बेटे थे नशे में थे, धनी पिता के बेटे थे, भूल गए कि संत को आदर देना चाहिए। तो नारद मुनि जी ने क्या किया, उन्हें उनकी भलाई के लिए उन्हें श्राप दिया कि तुम पेड़ बजाओगे, क्योंकि पेड़ जो है वो नंगे खड़े होते हैं, तो तुम पेड़ बजाओगे पर मीरा रोड में नहीं। उनके बल दिया कि तुम वृक्ष बनोगे कहां, महाराज नंदा के आंगन में। और 100 सालों के बाद, 100 साल भी कौन से, देवताओं के 100 साल, हमारे कैलेंडर और देवताओं के कैलेंडर में अंतर है। हमारे 6 महीने उनके 1 दिन के बराबर है, तो अंदाजा लगाओ आपके 1 साल उनके 2 दिन के बराबर है। तो 100 सालों तक वो वृक्ष के रूप में खड़े हुए महाराज नंदा के आंगन में। फिर 100 सालों की समाप्ति पर भगवान ने अपने भक्त द्वारा दिया हुआ वचन का पालन किया। जब भगवान के भक्त कुछ कहते हैं तो भगवान उसका पालन करते हैं। नारद मुनि जी ने एक तरह से तो श्राप दिया था 100 सालों के लिए तुम बनोगे वृक्ष, साथ में ये वर दिया था कि 100 सालों की समाप्ति पर आपको भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान का दर्शन प्राप्त होना कोई साधारण कार्य नहीं है। तो भौतिक धन के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है, भूल जाता है कि भौतिक धन केवल 2 दिन के लिए रहेगा। हम यही सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम धन से जीवन को लंबा कर देंगे, अमेरिका चले जाएंगे ऑपरेशन के। अरे भाई, वहां भी लोगों की मृत्यु आती है। तो ठाकुर भक्त जी कह रहे हैं, चाहे तुम गृहस्थ आश्रम में हो या सन्यासी या वानप्रस्थ, हरि नाम को जीव के साथ जोड़कर रखो। माया जले बाधा होए, देही मिचे काजा लोए, तुम माया की गोद में फंस गए हो, पर अब तो तुम्हें पूरी चेतना प्राप्त हुई है। मनुष्य जीवन द्वारा पूरी चेतना प्राप्त होती है ना, पशुओं के जीवन में भी चेतना है पर मनुष्य योनि से कम, इतना तो मानोगे। आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर लेते हो, आप अनेक चीजें कर सकते हो, पढ़ सकते हो, पशुओं में तो ये योग्यता नहीं है। आजकल विज्ञानी ने रोबोट बना दिया, रोबोट्स, हाँ, बड़े बड़े कारखानों में पश्चिम देशों में खास करके वो आदमी मशीन चलाने की वजह रोबोट बटन दबाता है। तो हम कहते हैं, अरे देखो रोबोट, अरे भाई रोबोट जो कार्य कर रहा है क्योंकि किसी मनुष्य योनि ने उसे बनाया है, ठीक है ना। एक जैसे आजकल सब विज्ञानियों को बहुत आदर दे रहे हैं, विज्ञानी जो कर पा रहे हैं क्यों, क्योंकि भगवान ने उन्हें बुद्धि दी है। और भगवान आपको ये बुद्धि नहीं देते तो विज्ञानी क्या कर पाएंगे, सच बात है ना। तो अंत में तो हमें पूरा आदर भगवान को ही देना चाहिए हर कार्य के लिए। तो सुख में दुख में हर कार्य हर स्थिति में भगवान का स्मरण करो। अब अभी ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है जिसमें पूरी चेतना है, इसका उपयोग करो किस लिए, राधा माधव का भजन करने के लिए, राधा माधव की सेवा करने के लिए, और आप मीरा रोड वालों भक्तों के लिए राधा गिरधारी की सेवा करने के लिए। अब आपको ये चेतना प्राप्त हुई है, ये पूरी चेतना का लाभ उठाओ। आगे कहते हैं, ये मनुष्य जीवन, जीवन होयला शेष न बाजे ऋषिकेश, ये जो जीवन है मनुष्य जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है, सच है कि नहीं, क्या मीरा रोड बुरेवली और इस इलाके में ये सिखाया जाता है कि किसी समय समाप्त नहीं होगा जीवन, ये किसी वक्त समाप्त हो सकता है, किसी समय भी जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए ठाकुर भक्तियों जी भीख मांग रहे हैं। देखो इतने महान संत महात्मा हमारे से भीख मांग रहे हैं, तो हमें उसका पालन करना चाहिए या नहीं? हाँ, ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं कि कृपा करके हरि नाम को जरूर स्वीकार करो। हरि नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। कली काले नामा रूप कृष्ण अवतार। कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं उनके दिव्य नामों के दिव्य नामों में। इसीलिए हम हरि नाम का जाप दिन रात कर सकते हैं। एक महान आचार्य थे ठाकुर भक्ति विनोद, माफ करना, हरिदास ठाकुर, जिनका जन्म हुआ था मुसलमान खानदान में। मुसलमान राजा ने उन्हें 22 बाजारों में पिटवाया। 22 बाजारों में क्या था उनका दोष? दोष ये था कि वो हरि नाम के प्रति आकर्षित थे। राजा ने पहले अपने प्रतिनिधियों को भेजा, वैश्यों को भेजा उन्हें आकर्षित करने के लिए, और वैश्य उन्हें आकर्षित करने के बजाय उनके हरि नाम के प्रति आकर्षित हो गए। फिर उन्होंने और प्रतिनिधियों को भेजा, अंत में उन्हें पिटवाया जब भी उन्होंने हरि नाम नहीं किया। हमें अभ्यास है कि जब हमारी संस्था पहले कम्युनिस्ट देशों में गई, खास करके रशिया को पहले सोवियत यूनियन बुलाते थे, तो आज उसको रूस बुलाते हैं, पर जब उस जमाने में ज्यादा बड़ा था देश सोवियत यूनियन। तो जब 1982 के करीब हमारे भक्त वहां प्रचार करने गए थे पहली बार, 1980 के करीब, सरकार ने कईयों को पकड़ लिया था और जेल में डाला और उन्हें बहुत ज्यादा मिडल ईस्ट से भी ज्यादा ऑयल है, तो वहां भेजा, पर वहां ठंड बहुत होती है, -50 डिग्री टेम्परेचर। तो उन्होंने भक्तों को पूरे सोवियत यूनियन ने पकड़कर साइबेरिया में भेज दिया, वहां के जेल खाने में। वैसे तो पश्चिम देशों में आप सर्दी में भी जाओ, आप सर्दी महसूस नहीं करते क्योंकि हीटिंग बड़ा अच्छा होता है अंदर, पर उन जेल में तो हीटिंग भी नहीं थी। तो इतने ठंडे स्थान में भक्तों को रखा। क्या था उनका दोष? क्योंकि उन्होंने हरे कृष्णा को अपनाया था और वो भगवान का प्रचार कर रहे थे। तो ये है कलियुग की स्थिति। जैसे आपने चाइना देश का नाम सुना है, हाँ, बाजार में मेड इन चाइना खरीदते हो गए, तो चाइना देश में अगर भगवान का प्रचार कर रहे हो आज, तो आपको एकदम जेल में डाल देंगे। आप भगवान की चर्चा भी नहीं कर सकते वहां, ऐसी स्थिति है, सच बात है। तो लोग छुप छुप कर करते हैं और गवर्नमेंट इतनी कड़क है धर्म के विरोध में कि लोग डर गए हैं। तो ये है स्थिति। तो ठाकुर भक्तियों जी कह रहे हैं कि हरि नाम को स्वीकार करो। तो हरि नाम हरिदास ठाकुर जी ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि हरि नाम और भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं। भगवान ने पूरी शक्ति डाली है अपने दिव्य नामों में। तो जब हम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हैं, तो भक्त जो हैं इसके द्वारा अत्यंत आनंद सुख अनुभव करते हैं। तो यह है असली सुख प्राप्त करने का। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्तेव 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 गति था। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम यही एक साधन है। आप कहोगे स्वामी जी ये तो हम पहले भी सुन बैठे हैं, पर अफसोस की बात यह है कि हम इसका पूरा पालन नहीं कर पाते। सच बात है, सुन बैठे हैं पर इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो बार बार सुनने की आवश्यकता है। इसीलिए हर रविवार जब आप प्रवचन सुनते हो, उसका अंत क्या होता है, निर्णय क्या होता है,
प्लीज चैंट हरे कृष्ण, फिर बगल के हरे कृष्ण को जाती है ना, क्योंकि हम तो इतने ढीठ हैं, बुरा नहीं मानना, सुनने के बाद भी कहते हैं कल शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, और वो कल का कुछ भरोसा है, कुछ भरोसा नहीं। तो आप सब भक्तजनों के हम भारी हैं कि आप अध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हो, जैसे आपने पहले भी सुना होगा चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश है कि हरि नाम के साथ भगवद गीता पढ़ो, भगवतम पढ़ो। जब आप इन ग्रंथों को पढ़ते हो तो आपका ज्ञान बढ़ता है, और यह है असली सुख शांति का माध्यम। आज भौतिक समाज में हम सोचते हैं कि भौतिक सुविधाओं के द्वारा शांति की प्राप्ति होगी, सोचते हैं ना, हम सोचते हैं स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो देश उन्नति करेगा, हम सोचते हैं कि विदेशी लोग यहां पैसा लगाएंगे तो देश की उन्नति होगी। देश की उन्नति होगी जब आप लोगों को अपनी संस्कृति का ज्ञान दोगे। आज तक हमारी स्थिति ऐसे है कि हमारे तीर्थ के स्थानों में भी जगह जगह अंडा बिक रहा है। आपको शायद पता होगा 10 साल पहले भारत के किसी तीर्थ के स्थान में अंडा नहीं बिकता था। आप तो गुजराती लोग गोकुल जाते होंगे, 5 साल पहले गोकुल में एक अंडे की दुकान नहीं थी, 3 साल पहले कुरुक्षेत्र में किधर अंडा दिखता भी नहीं था, आज जाओ आपको अंडे दिखते हैं, एक जगह नहीं अनेक स्थान। और समाज की स्थिति बिगड़ते जा रही है, तो अगर आप सब गंभीरता के साथ चैतन्य महाप्रभु जी के आंदोलन को स्वीकार नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो आप सबका सौभाग्य है कि आप प्रभुपाद जी की इस्कॉन संस्था के साथ जुड़े हो, आपका सौभाग्य है कि आप इस्कॉन के साथ जुड़े हो। अब आप भक्तों से यही निवेदन है कि आप कृपा करके गंभीरता के साथ इस संदेश को स्वीकार करो और अपने जीवन को सुखी बनाओ, यही है सुख प्राप्त करने का साधन, इसे स्वीकार कीजिए और ग्रंथों को पढ़ो, और अगर कुछ समझ नहीं आता तो आके पूछो, जैसे आप जब विद्यार्थी थे अब पढ़ते थे ना पास होने के लिए, तो उसी प्रकार भगवद गीता भी पढ़ो। हम इसके महत्व को नहीं समझते, भगवद गीता को बड़े ध्यान से पढ़ो। आजकल झूम में हर संडे ये कोर्स चल रहा है ना, गीता भगवतम इन सब ग्रंथों का। मैंने आज सूरदास कह रहा था 125 लोगों ने वहां एनरोल किया हुआ है, तो आप लोग भी पढ़िए। हर रविवार को 3 घंटे का कोर्स होता है जिसमें आप जैसे भक्त रियासत भक्त आकर पढ़ सकते हो। हम चाहते हैं कि आप गहराई से इन ग्रंथों को पढ़ो भगवान के संदेश को समझने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ पूछिए पूछिए। पर कल पक्का, शायद परसों भी। हाँ हाय बाबा, हाय बाबा, बच्चों के लिए पीछे खेल का स्थान बनाना चाहिए। हाँ अच्छा, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। क्या आपने कहा, मैं समझा नहीं। तो बाद में छूट दे दी, बाद में जब रिलीजियस फ्रीडम आया तो उन्होंने हमें छूट दे दी, जब छूट दी तो भगवान की दया से संस्था बहुत फैल गई। मेरे साथ जो लड़का आया है वो भी रूसी है, पर वो भारत में पढ़ा था आपके चंडीगढ़ के गुरुकुल में और वृंदावन के गुरुकुल में, तो हिंदी भी बोलता है। अच्छा और कोई प्रश्न? हाँ
आपने कहा और ये सही भी है कि जीवन का लक्ष्य पाने के लिए कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, हरिनाम करना है, लेकिन समाज में यदि हम जाके लोगों से बहुत विनती करते हैं तो वो इस स्थिति में है कि इतना बोलने के बावजूद भी वो आगे आने के लिए नहीं आते हैं और वो टीवी का जो माध्यम है उसके पीछे पड़ जाते हैं।
हमारे परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत जी को उदाहरण देते थे। एक समय एक व्यक्ति कोठे में पतंग उड़ा रहा था, पतंग उड़ाते समय नीचे गिरने ही वाला था कि व्यक्ति पीछे से आकर कहा, संभल के गिरने वाले हो, और उसने कहा पतंग उड़ाने दो, वो गिरने को तैयार था। तो आज समाज की स्थिति ऐसे है कि अगर आप कहो कि तो आप पशु बन जाओगे, कहते बनने दो। एक शराबी था तो गांव वालों ने उसे कहा शराब पीना अच्छा नहीं है, नरक में जाओगे। तो उसने कहा मेरे पिता भी शराब पीते हैं तो वो भी नरक में जाएंगे। उसने कहा मेरे मित्र भी शराब पीते हैं वो भी नरक में जाएंगे। तो इस प्रकार से मेरा भाई भी शराब पीता है वो भी नरक में जाएंगे। फिर वो कहने लगा वो नरक स्वर्ग है, हम सब एक साथ फिर से मिलकर शराब पिएंगे। तो मतलब ये है कि आज लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आप उन्हें समझाने का प्रयास करो तो वो क्या कहते हैं कि आप पागल हो। पर आप घबराओ मत, आप ये मत सोचो कि सब ऐसे सोचते हैं। अगर सब ऐसे सोचते होते तो आप सब यहां होते आज, सच बोलो, दो तीन व्यक्ति होते, पर आप सब क्यों यहां उपस्थित हो? क्योंकि आप समझ गए हो कि असली चीज क्या है। भक्ति विनोद स्वामी प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में गए थे अकेले, और जब वो गए कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं। तो ये नहीं सोचो कि सब ऐसे सोच रहे, सब ऐसे नहीं सोच रहे, कई व्यक्ति उपाय चाहते हैं, और जब वो भक्तों की संग में आते हैं तो उनका जीवन में परिवर्तन होता है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा ग्रंथों को बांटो। आपको एक उदाहरण दूंगा कि एक समय हमारी रशिया में एक माता जी शिष्य है, उसकी बेटी जेल में थी, गलत काम किया था तो जेल में गई। माता भक्त थी तो माता ने बेटी को भगवद गीता रूस भाषा में भेज दिया जेल में पढ़ने को। तो बेटी ने जेल में पढ़ा, बड़ी प्रभावित हुई और हरि नाम शुरू कर दिया जाप करना। फिर बेटी ने वो भगवद गीता जेल में दूसरी औरतों को दिया पढ़ने को, और 6 महीने में ये परिणाम हुआ कि 6-7 औरतें भक्त बन गईं, जप करना शुरू कर दिया, और जब जेल से निकली कई 2-3 ने तो दीक्षा भी ली। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरा जगत अंधेरेपन में है। लोग अंधेरेपन से निकलना चाहते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि उनके भक्त पवित्रता से प्रचार कर रहे हैं तो उनको फिर सुविधा देते हैं सफलता की। ठीक है ना? और मुझे लगता है कि आप में से कईयों को देर हो रही है, आपकी क्या प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट है क्या? हाँ, आज डायमंड मार्केट खुला है, बाजार खुला है आज, नहीं तो और कोई क्वेश्चन, और कोई प्रश्न आप पूछे। प्रसाद गर्म नहीं मिलेगा, ठंडा तो नहीं होगा।
हरे कृष्ण महाराज।
हाँ,
जो स्थिति प्रज्ञा अवस्था है उसमें षड रिपु का
क्या
स्थिति प्रज्ञा अवस्था, स्थिति प्रज्ञा, स्थिति प्रज्ञा भगवत गीता में जो कहा गया है स्थिति प्रज्ञा अवस्था, जो बहुत दुर्लभ है, और अगर आप हमारे में षड रिपु रहेंगे तो
हाँ।
और उसमें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब आते हैं. अगर उसका अभाव रहेगा तो ही स्थिति प्रज्ञा अवस्था प्राप्त हो सकती है. बट वेदर इट इज पॉसिबल फॉर गृहस्थ टू बिकम स्थिति प्रज्ञा, बिकॉज वेन गृहस्थ इज देयर गृहस्थ ऑलवेज इन्वॉल्व इन काम भावना. काम इन्वॉल्व मीन्स ही हैज टू परफॉर्म दैट थिंग. सो
आप सब दोषों के प्रभाव से बच सकते हो अगर आप हरि नाम, साधु संगत और भक्ति विधियों की शरण लो. देवी ऐश गुलामाई मामा माया धुरत है. भगवान कहते हैं माया का विरोध करना बहुत कठिन है. माँ में वाह में प्रपद्यांते माया में ताम तरंती थे. पर अगर जो मेरी शरण में आता है ही कैन ओवरकम. तो हमें लगता है कि हम इन सब दोषों को वश में नहीं ला सकेंगे, पर अगर आप श्रद्धा से भक्ति की विधियों का पालन करो तो अवश्य ही ला पाओगे. ट्राई यू चैंट चैंटिंग करते हो तो गो ऑन चैंटिंग. ओके हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम.